उपनिषदों का जीवन दर्शन, इस विषय पर आज दूसरा चिंतन करने के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं। कल मैंने कहा था कि ईशा वास्योपनिषद को इस समय हम लोग अपने चिंतन का विषय बनाएंगे। अगले वर्ष केनोपनिषद ले लेंगे और इसी प्रकार यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो अलग अलग उपनिषदों को लेकर के चिंतन किया जाएगा। कल हमने उपनिषदों की भूमिका पर विचार किया, यह भी देखने की चेष्टा की कि जीवन में क्या किसी प्रकार का दर्शन आवश्यक है। इस प्रश्न का उत्तर हमने भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से देने का प्रयास किया है, जिसका निष्कर्ष यह है कि जीवन का एक दर्शन होना ही चाहिए। मनुष्य बिना किसी दर्शन के जीवन को जी नहीं पाता है। जिसके जीवन में कोई दर्शन नहीं है उसके लिए जीवन भारत स्वरूप हो जाता है, उसके लिए जीवन अर्थहीन हो जाता है। कल डॉक्टर राधाकृष्णन का एक उद्धरण हमने आपके सामने दिया था, जहां पर वे कहते हैं कि चुनाव दर्शन और नहीं दर्शन के बीच का नहीं है, बल्कि चुनाव है सही दर्शन और गलत दर्शन के बीच का। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य को जीने के लिए दर्शन चाहिए ही। वह सही दर्शन क्या हो, वह उपनिषदों के माध्यम से ध्वनित होता है। उपनिषद क्या है? कल हमने कहा था कि उपनिषदों में ब्रह्म विद्या है, आत्म विद्या है, पराविद्या है। पराविद्या का तात्पर्य वह विद्या जिसके द्वारा हमारे भीतर का सत्य अनुभव में आता है। मेरा सत्य क्या है? क्या यह जो शरीर दिखाई दे रहा है वह मेरा सत्य है? हां सत्य है। जितने वर्षों तक शरीर जीवित रहता है तब तक वह सत्य है। शरीर के नष्ट होने के बाद क्या मैं बचा रहता हूं? प्रश्न यह किया जा सकता है। इसके उत्तर में उपनिषद कहते हैं कि हां हम बचे रहते हैं। जो बचा रहता है शरीर के नष्ट होने के बाद वह क्या है, इसकी खोज उपनिषदों में की गई है। कठोपनिषद में सीधे तौर पर इसकी खोज की गई, अन्य उपनिषदों में अलग अलग प्रणाली का अवलंबन लेकर के इसका अनुसंधान किया गया। ईशावास्योपनिषद में वह अनुसंधान तो है पर सांकेतिक रूप में है। वहां पर ऐसा सीधा अनुसंधान दिखाई नहीं देता जैसा कठोपनिषद में हमें दिखाई देता है। अब यदि हम विचार करें कि शरीर के भीतर क्या है तो हमें क्या मालूम पड़ता है? शरीर के भीतर विचारों का पुंज तो मालूम पड़ता है। हम विचार करते हैं, मन में विचार उठते रहते हैं, एक ऐसा यंत्र है इस भौतिक शरीर के भीतर जो विचारों को उत्पन्न करता रहता है, उसी को हम मनोयंत्र कहते हैं, उसी को हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो ऐसा हमारे भीतर में सूक्ष्म शरीर है, वह मन है जो विचार उपस्थित करता रहता है। अच्छा, शरीर और मन के भी पीछे कुछ है? यदि ऐसा प्रश्न करें तो उपनिषद कहते हैं कि इन दोनों के पीछे आत्मतत्व है। आत्मतत्व क्या है और कैसा है, आज उसी का चिंतन किया जाएगा आपके समक्ष। पर हम प्रश्न कर सकते हैं कि आपने कहा कि देह और मन के पीछे आत्मतत्व है, हम कैसे इसे समझें, इसका प्रमाण क्या है? तो इसके उत्तर में ऋषि यह कहेंगे कि हर वस्तु का भौतिक प्रमाण देना तो बहुत कठिन है, पर हम कुछ अनुमान करते हैं। अनुमान के माध्यम से हम एक सत्य पर जाकर के उपनीत होते हैं, पहुंच जाते हैं। तो इसी प्रकार इस क्षेत्र में भी अनुमान करना पड़ता है, और यह केवल दर्शन का सत्य नहीं है, यह तो गणित का भी सत्य है। गणित के क्षेत्र में भी हमें कुछ बातें मान लेनी पड़ती हैं। जैसे हम किसी से पूछें एक बिंदु क्या है, तो वह कहेगा कि बिंदु वह है जिसके कोई लंबाई नहीं, कोई चौड़ाई नहीं। ए पॉइंट हैज नो लेंथ एंड नो ब्रेथ। व्हाट्स ए स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन इज ए लेंथ विदाउट एनी ब्रेथ। सरल रेखा वह है जिसमें लंबाई तो है पर चौड़ाई नहीं है। पर क्या ऐसी सरल रेखा आप बना सकते हैं जिसमें कोई चौड़ाई ना हो? क्या आप कोई ऐसा बिंदु बना सकते हैं जिसमें कोई डायमेंशंस ना हो? आप नहीं बना सकते। तो यह जो हमने कहा वह हाइपोथेटिकल है। हम मान लेते हैं कि यह बिंदु है, हम मान लेते हैं कि यह एक सरल रेखा है, और उसके पश्चात जो हमारे समक्ष बात आई है सिद्ध करने की, जो उपपत्ति है, उस उपपत्ति को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार हमें भी विज्ञान के क्षेत्र में जैसे हम मानते हैं, इस अध्यात्म के क्षेत्र में भी कुछ बातें मान लेनी होती हैं, बाद में उन बातों को सिद्ध किया जाता है अनुभूति की प्रयोगशाला में। तो यहां पर आत्म तत्व के संबंध में जो विचार उठा, तो प्रश्न किया गया कि कैसे हम जाने कि शरीर और मन के पीछे एक आत्म तत्व है जो चिरंतन है, शाश्वत है, अपरिणामी है, जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, वह एक सरीखा रहता है, फेर बदल नहीं होता, यह सब हम कैसे समझ? तो इसको समझाने के लिए एक युक्ति काम में लाई जाती है। वह युक्ति क्या है कि जैसे मैं देखता हूं इस शरीर को, शरीर में तो परिवर्तन लगा हुआ है, जब से मैंने जन्म लिया, यह जो 60 वर्षों की कहानी बही, कितना परिवर्तन इस कहानी ने इस शरीर में देखा है। मन भी परिवर्तनशील है, सतत मन में परिवर्तन चलता रहता है। अभी मन उदास, थोड़ी देर बाद उत्फुल्ल, तो मन का परिवर्तन भी दिखाई देता है। तो इस परिवर्तन को देखने वाला कौन है? कौन देख करके कहता है कि मन में परिवर्तन हो रहा है? यह प्रश्न उठता है। जो देखने वाला होगा उसी को हम आत्मा कहते हैं, जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है, जिसमें परिवर्तन नहीं वही परिवर्तन को देख सकता है। जैसे मैं नदी के किनारे खड़ा हूं, मैं नदी को बहता हुआ देखता हूं, पानी बह रहा है। कैसे जानता हूं कि पानी बह रहा है? इसलिए जानता हूं कि मैं तीर पर खड़ा हूं। तीर पर खड़े होने के कारण उस तीर पर जो बहता नहीं है, जो स्थिर है, उसके कारण वह जल बहता हुआ दिखाई देता है। यदि मैं नदी में नौका में बैठा हूं तो नदी का प्रवाह मुझे प्रवाहमान होता हुआ दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि नौका खुद चल रही है। तो मुझे बोध होता है इस परिवर्तन का, क्योंकि मैं तीर पर खड़ा हूं। तो ठीक इसी प्रकार यह जो शरीर का परिवर्तन देखने वाला मैं, मन के परिवर्तन को समझने वाला मैं, यह मैं क्या है? उपनिषद कहते हैं कि वही आत्म तत्व है, उसके कारण ही तुम इन परिवर्तनों को देखने में समर्थ होते हो। फिर यह कहा गया, प्रश्न उठाया गया कि अच्छा, आपने नौका का उदाहरण दिया, या आज का उदाहरण जो बहुत अधिक प्रचलित है, जो सभी के लिए सुलभ है। नौका तो उसी के लिए सुलभ है जहां पर पानी है, नदी है, तालाब है। पर हम सभी के सभी तो रेलगाड़ी में चढ़ते हैं, उसी का उदाहरण ले लें। यदि हम एयर कंडीशन डब्बे में बैठे हैं, आपको ऐसा लगेगा बाहर जहां दिखाई नहीं देता, मानो गाड़ी चल ही नहीं रही है, ऐसा आपको बोध होता है। आप खिड़की से बाहर की ओर झांके, गाड़ी चल रही है, इसका बोध तब होता है जब जमीन भागती ही दिखाई देती है। वस्तुतः जमीन तो नहीं भाग रही है, पर जमीन के भागने का भ्रम होता है, वस्तुतः गाड़ी भाग रही है। जैसे मान लीजिए मैं एक ट्रेन में बैठा हूं और वह ट्रेन स्टेशन की ओर जा रही है, उसी समय समानांतर पटरी पर दूसरी ट्रेन आ गई और वह भी उसी दिशा में जा रही है। अगर दोनों की गति समान हो तो आप देखेंगे कि गति का भान ही नहीं होता है। ऐसा लगता है कि मेरी गाड़ी भी खड़ी, वह भी गाड़ी खड़ी। गति का भान कब होता है? जब दोनों की गतियों में अंतर होता है तब भान होता है। तो इसी प्रकार कोई तर्क कर सकता है कि आपने कहा आत्म तत्व, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, वह स्थिर है, और इसी कारण मन और शरीर के परिवर्तनों का बोध होता है। तो आप ऐसा क्यों नहीं कहते कि मन स्थिर नहीं है, यह जो आत्म तत्व है स्थिर नहीं है, आत्मा की जो गति है उसमें भी गति है, पर शरीर और मन की तुलना में उसकी गति भिन्न है, इसलिए ऐसा क्यों नहीं कह सकते कि आत्मा में यदि हम खड़े हो जाएं तो शरीर और मन की गतियां दिखाई देती हैं, क्योंकि आत्मा की गति इन दोनों की गतियों से भिन्न है, ऐसा भी तो कह सकते हैं। तो उसके उत्तर में उपनिषद कहते हैं, फिर तो एक और आत्मा का हमें इस प्रकार से ध्यान करना पड़ेगा, एक और आत्मा की कल्पना करनी पड़ेगी जो इस आत्मा की गति की तुलना में कम गतिमान है, और फिर उसके बदले एक और तीसरी आत्मा की कल्पना करनी पड़ेगी जो इस दूसरी आत्मा की गति की तुलना में कम गतिमान है। यह तो रिग्रेशस एट इन्फिनिटम हो गया। इसको हम अनवस्था दोष कहते हैं संस्कृत में, दर्शन में। तो यह तो खड़े ही कहीं नहीं हो सकते, यह तो इसी प्रकार चलता रहेगा। तो इसलिए अगर एक ही आत्मा को मान लेने से हमारी समस्या का समाधान हो जाता है तो इस प्रकार बहुत सी आत्माओं को हम क्यों माने? एक आत्मा को हमने मान लिया, हाइपोथेटिकली प्रेमिस के रूप में स्वीकार कर लिया, उससे यदि हमारी समस्या सुलझ जाती है तो दूसरी आत्मा को मानने का क्या प्रयोजन है? और बिल्कुल सही है तर्क। तो मैं एक आत्म तत्व को मानता हूं शरीर और मन के पीछे, जो दृष्टा है, जो साक्षी है, जो शरीर और मन की गतियों को देखता है, और वह स्वयं अपने आप में गतिहीन है, स्थिर है, यह वैसा आत्म तत्व है। और इस आत्म तत्व के कारण जो स्थिर है, जो गतिहीन है, शरीर और मन की जो कहानी है, वह कहानी जाकर के जुड़ती है, उसमें से कोई अर्थ निकलता सा मालूम पड़ता है। यह कैसे? जैसे आप फिल्म देखने के लिए गए, सामने सादा पर्दा है, वह स्थिर है, उसमें कंपन नहीं है, और उधर पीछे से फिल्म फेंकी जाती है रोशनी के द्वारा, पीछे में हम देखेंगे कितने जोरों से फिल्म भाग रही है, और वह जब प्रतिबिंबित होती है पर्दे पर एक कहानी दिखाई देती है। यदि आप फिल्म को ले लें तो देखेंगे कि फिल्म की एक रील में छोटी छोटी फिल्मों के कितने हजार टुकड़े हैं। एक फिल्म में नायक ने हाथ इतना किया है, दूसरी फिल्म को देखेंगे थोड़ा सा हटा है, तीसरी में और थोड़ा सा हटा है, चौथी में और थोड़ा सा, सातवीं में इतना, और फिर धीरे धीरे। पर जब वही भागती हुई फिल्म को हम देखते हैं पर्दे पर प्रतिफलित हुई, तो क्या देखते हैं? नायक हाथ हिला रहा है, क्रिया कर रहा है। तो ये छोटी छोटी जो फिल्में हैं, अपने आप में कोई कहानी उसमें से नहीं निकलती, पर ये जो छोटी छोटी फिल्में भागती हुई प्रतिबिंबित होती हैं स्थिर पर्दे पर, एक कहानी दिखाई देती है। हमारे जीवन में जो घटनाएं घटती हैं छोटी छोटी फिल्मों के समान, कब घटना घटी? मैं जब बहुत छोटा था, 2 साल का था, एक घटना घटती है। आज भी जब उसका स्मरण करता हूं तो घटना बिल्कुल आंखों के सामने खड़ी हो जाती है। तो इतने साल जो घटना घटी है उसको स्मृति में ला देने वाला तत्व कौन सा है? वह कौन सा तत्व है जिसका आधार प्राप्त होने के कारण ये सारी घटनाएं एक कहानी के रूप में गूंथ जाती हैं? तो ठीक जैसे वह पर्दा मानो भिन्न भिन्न छोटी छोटी फिल्मों को गूंथ करके एक कहानी हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार आत्म तत्व का स्थिर पर्दा है जिसके कारण जीवन की कहानी हमारे सामने आती। यदि स्थिर पर्दा ना हो तो कहानी कहां पर आए? ये फिल्में कहां पर जाकर के एक कहानी का आभास हमें कराएं? जैसे आपने कभी देखा होगा बाजार में या और जहां कहीं मेला लगा हो, ये फिल्म डिपार्टमेंट वाले ले जाते हैं फिल्म दिखाने के लिए, वहां पर अस्थाई ऐसा पर्दा तान देते हैं, जब हवा चलने लगती है तो पर्दा बहुत हिलता है, फिल्म दिखाई नहीं देती, अगरम बगरम दिखाई देती है, कुछ मतलब ही नहीं होता। तो फिल्म यदि ठीक ढंग से देखनी है तो पर्दा का अकंपनशील होना अनिवार्य है, पर्दे का स्थिर होना अनिवार्य है, तो कहानी ठीक दिखाई देती है। तो जीवन की कहानी जिस पर्दे के कारण अंकित होती है, जो पर्दा स्थिर है, उस पर्दे को हम आत्म तत्व कहते हैं। कोई कह सकता है, पूछ सकता है, आत्म तत्व के बिना क्या काम नहीं चल सकता? इसका उत्तर इसी से ले लीजिए कि अगर इसके बिना आप काम चला सकते हैं, अगर पर्दे के बिना आप फिल्म किसी को दिखा सकते हैं, तो ठीक है, बिना आत्मा रूपी पर्दे के आप जीवन कथा कह लीजिए, पर वह असंभव है। यही आत्म तत्व है जो जीवन को अर्थवत्ता प्रदान करता है। तो कहा गया है उपनिषदों में, इसी आत्म तत्व को जानो, यही तुम्हारा असल स्वरूप है। और जब तुम इस आत्म तत्व को जान जाओगे तो जो तुम सुख चाहते हो, जिस आनंद की तलाश कर रहे हो, अभी तक सुख की संवेदना तुम्हें छोड़ करके निकल जाती है। सुख की तलाश में कि मैं कहां कहां नहीं भटकता, मेरा सारा जीवन सुख की तलाश की ही तो कहानी है। मैं इधर हाथ मारता हूं, मुझे लगता है कि पैसा कुछ मिल जाए तो उसमें सुख मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है कि अमुक पद मुझे प्राप्त हो जाए तो मुझे सुख मिलेगा, मैं भागता रहता हूं सुख पाने के लिए और अंत में देखता हूं कि सुख कहीं भी तो नहीं मिला। वह मरु मरीचिका के समान ठगता हुआ मुझे निकल गया और मैं अंत में अनुभव करता हूं कि अरे मैं तो ठगा गया, सुख तो कहीं मिला नहीं, कैसे मिलेगा। देह और मन पर आधारित जितने सुख हैं वे उतने ही क्षणिक हैं जैसे देह के अवयव क्षणिक हैं, जैसे मन का विचार क्षणिक है, जैसे संवेदना क्षणिक है। अभी मुझे लगता है कि मुन्ना इस समय इम्तिहान देगा, बढ़िया रिजल्ट आ जाए तो मुझे लगता है कि मेरे जीवन की सारी समस्याएं सुलझ गईं, मुन्ना बढ़िया पास होता है, खूब खुशी मनाई जाती है। फिर उसके बाद समस्या आकर के खड़ी हो गई, एक नई समस्या आ गई जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। तो जिस सुख को मैं देखता रहता हूं, जिसकी राह देखता रहता हूं आने की, तो आने की राह देखता हूं, जब सुख आता है तो बहुत थोड़ी देर में वह निकल जाता है। यह तो जीवन का सत्य है कि हम देखते रहते हैं, अमुक व्यक्ति को उत्कट मानो होकर के आने का हम राह मानो रास्ता देख रहे हैं, वह व्यक्ति आता है, खुशी होती है, उसके बाद खुशी फिर धीरे धीरे गायब हो जाती है। तो यहां यह कहा गया है कि आत्म तत्व ही एक ऐसा आधार है जिस पर खड़ा होकर के तुम यथार्थ आनंद को प्राप्त कर ले सकते हो। उस आत्म तत्व को बताने वाला रास्ता यह उपनिषदों का है। जैसे उपनिषद शब्द की व्याख्या करते हुए भगवान शंकराचार्य कहते हैं मुंडक उपनिषद में, उन्होंने कहा कि यह उपनिषद क्या है, उप और नी ये दो उपसर्ग लगे हैं और सद धातु है। सद धातु के तीन प्रकार के अर्थ किए गए हैं। एक तो विशरण अर्थ है जिसका मतलब होता है शिथिल करना। दूसरा गम के अर्थ में भी सद धातु का प्रयोग होता है, गम गच्छति मानो गति, मानो चल रहा हो कहीं प्राप्त करने के लिए गति हो रही हो, वह भी एक सद धातु का अर्थ है। तीसरा अर्थ है नाश करना, अवसादन करना, नष्ट ही कर देना। तो ऐसे ये तीन अर्थ सद धातु के हैं और उप और नी ये दो उपसर्ग लगे हैं। उप का मतलब पास जाना, समीप जाना, जैसे हम कहते हैं ना कि गुरु के समीप जाएं और जाकर के बैठें, तो उप कहने का तात्पर्य यह है कि हम पास में जाएं, निकट में जाएं, और नी का मतलब है आत्यंतिक रूप से, एकदम बिल्कुल, यह नी का अर्थ है। तो यहां पर व्याख्या करते हैं शंकराचार्य मुंडक उपनिषद में उपनिषद शब्द की और कहते हैं ये इमाम ब्रह्म विद्याम उपयन्ति आत्मभावेन श्रद्धा भक्ति पुरस्सराः संतः तेषां गर्भ जन्म जरा रोगादि अनर्थ पूगम निषादयति परम वा ब्रह्म गमयति अविद्यादि संसार कारणम च अत्यंतम अवसादयति विनाशयति इति उपनिषद उपनिपूर्वस्य सदेहे एवं अर्थस्मरणात्। यह उन्होंने कहा, इसका अर्थ क्या है, ये इमाम ब्रह्म विद्याम उपयन्ति आत्मभावेन, जो इस ब्रह्म विद्या के पास आत्मभाव से जाते हैं, श्रद्धा भक्ति पुरस्सराः संतः, श्रद्धा और भक्ति से अंतःकरण को भर करके जो जाते हैं उपनिषद के पास जाते हैं। यह उपनिषद क्या है, ब्रह्म विद्या, ब्रह्म माने वही आत्म तत्व। ब्रह्म और आत्मा ये जो दो शब्द हैं ये दोनों एक ही अर्थ के पर्याय हैं। जब समष्टि की दृष्टि से हम कहते हैं तो वह ब्रह्म है, जब व्यक्ति की दृष्टि से कहते हैं तो वह आत्मा है, वही तत्व है, कोई फर्क नहीं, कोई अंतर नहीं। जब हम इंडिविजुअल की दृष्टि से उसका नाम देते हैं तो वह है आत्मा, और जब हम समष्टि कलेक्टिव ऐसा उसका नामकरण करते हैं तो वह है ब्रह्म। तो ब्रह्म और आत्मा में किसी प्रकार का भेद नहीं। तो यहां पर कहते हैं ये इमाम ब्रह्म विद्याम उपयन्ति आत्मभावेन श्रद्धा भक्ति पुरस्सराः संतः, जो श्रद्धा भक्ति से भरे अंतःकरण को लेकर के इस ब्रह्म विद्या के पास जाते हैं। तेषाम गर्भ जन्म जरा रोगादि अनर्थ पूगम निषाद्यति। यह जो गर्भ में आना, जन्म लेना, फिर बुढ़ापे का अनुभव करना, ये जो सारे दुख के बंधन है, इन दुख के बंधनों को यह विद्या शिथिल कर देती है। जब हम जाते हैं श्रद्धा और भक्ति के साथ, तो बंधन को यह विद्या शिथिल कर देती है। अनर्थ पूगम निषाद्यति परम वा ब्रह्म गम्यति, और हमें परब्रह्म के पास यह विद्या ले जाती है। यह दूसरा अर्थ, ले जाती है उस परब्रह्म के पास, उस परम सत्य के पास। और फिर अविद्यादि संसार कारणम च अत्यंतम अवसादयति, यह जो अविद्या जिसके कारण यह संसार का अनुभव है, जैसे कल हमने कहा, जो अविद्या सर्प देखा दिखा देती है, वस्तुतः वहां पर रज्जु है, वहां पर रस्सी है, पर अज्ञान के कारण हमें सर्प का बोध होता है। तो ठीक इसी प्रकार यह जो संसार का बोध होता है, वह इसलिए कि अविद्या है। तो कहते हैं अविद्यादि संसार कारणम च अत्यंतम अवसादयति विनाशयति इति उपनिषद। उपनिषद वह है जो इस संसार कारण जो अविद्या है उसका समूल नाश कर देती है। तो बंधन को शिथिल करना, ब्रह्म के पास ले जाना, पहुंचा देना, और उसी प्रकार अविद्या जो संसार कारण है उसका समूल नाश कर देना, यह उपनिषद शब्द का अर्थ है। तो यहां पर यह कहा गया कि यही अर्थ सभी उपनिषदों के माध्यम से ध्वनित होता है। तो कल हमने प्रथम तीन मंत्र आपके समक्ष रखे थे। पहला मंत्र है सिद्धांत का, यहां पर सिद्धांत आपके समक्ष वर्णित कर दिया, और जो मुख्य स्वर है ईशावास्योपनिषद का, वह स्वर भी व्यंजित कर दिया। इसका नाम ईशावास्योपनिषद है, यह विलक्षण परंपरा है उपनिषदों के नामकरण की। आप कहेंगे ईशावास्योपनिषद क्यों नाम रखा, इसका मतलब यह है कि ईशावास्य से यह उपनिषद शुरू होता है। ओम ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, तो ईशावास्य शब्द से यह उपनिषद शुरू होता है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया ईशावास्य उपनिषद। हमारे जितने भी उपनिषद हैं, कहीं ऋषि का नाम पता नहीं चलता कि किसने उपनिषद को लिखा, किसको अनुभूति हुई, किसने अपनी यह अनुभूति दूसरों के सामने, शिष्यों के सामने रखी, कहीं कुछ नहीं है। आपने देखा कहीं पर नाम की स्पृहा नहीं है, कहीं यश की निष्ठा नहीं है, केवल ब्रह्म निष्ठा, ब्रह्म विद्या का प्रसारण हो। किसके माध्यम से होता है यह तो गौण है, ब्रह्म विद्या लोगों के मध्य में जाए, बस यही प्रमुखता है। पर आजकल हम लोग कैसे हैं, यहां एक किताब से कुछ चुराएंगे, दूसरी किताब से कुछ चुराएंगे, तीसरी से चुराएंगे, और चुरा करके एक ग्रंथ लिखेंगे और मोटे हर्फों में लिखेंगे स्वामी आत्मानंद लिखने वाला। मतलब क्या है, यह दिखाने की हमारी प्रवृत्ति होती है। मैं कहता हूं कि मैंने मौलिक विचार किया है, आप मेरे ग्रंथ को देखिए, मेरा मौलिक विचार वहां पर दिखाई देता है। वह मौलिक विचार कैसा है, 20-25 ग्रंथों से चुराया हुआ मौलिक विचार है। और यहां पर ये जो उपनिषद के ऋषि हैं, इतना मौलिक विचार देते हैं, कहीं नाम तक नहीं है। रूप की तो बात जाने दीजिए, कहीं नाम तक नहीं है कि ये ऋषि कौन थे जिन्होंने ऐसा अद्भुत ज्ञान दिया। और ये लोग तो ही ठीक ठीक ईश्वर का संदेशा दे सकते हैं। ईश्वर का संदेशा कौन दे सकता है जिसके पास अपना देने के लिए कोई संदेश नहीं है, उसी के माध्यम से ईश्वर का संदेशा आता है। आज भारत में धर्म के आयोजनों की कमी तो नहीं है, फिर भी धर्म लंगड़ाता क्यों है, इसलिए लंगड़ाता है कि हम लोग ईश्वर का संदेशा देने का दावा तो करते हैं, पर वस्तुतः वह ईश्वर का संदेशा नहीं होता, वह हमारा अपना संदेशा होता है। हम धर्म का संदेशा नहीं देते, हम अपना संदेशा देते हैं, यह हमारी वृत्ति होती है। मैं आपके सामने इस प्रकार से विचारों को रखने की चेष्टा करता हूं कि आपको ईश्वर का स्मरण रहे या न रहे, पर आत्मानंद का स्मरण जरूर रहे। आप जरूर स्मृति में रखें कि आत्मानंद ने बढ़िया बात कही थी, यदि मेरे प्रवचन का यही उद्देश्य हो, यह ईश्वर का संदेशा देना तो नहीं है, यह तो आत्मानंद ने अपने अहम का संदेशा दिया। जैसे यह माइक है, यह माइक बढ़िया कब है? जब वह अपना संदेशा नहीं देता तब। मान लीजिए माइक ने अपना संदेशा देना शुरू किया तो आप लोग तो क्या कहेंगे, अरे हटाओ जी, क्या किरकिर किरकिर कर रहा है, सुनने ही नहीं देता है। तो माइक की किरकिरी तो आपको खटकती है, पर यह जो हमारा अहम इतनी किरकिरी पैदा कर रहा है, ईश्वर के संदेश को दबा दे रहा है, उधर हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि उपनिषदों के जो ऋषि थे, जो अनुभवी थे, संत थे, महात्मा थे, ये कैसे थे? जिन्होंने अपने अहम को पूरी तरह से विलीन कर दिया था, इसीलिए उनके माध्यम से प्रभु बोलते थे, और इसीलिए उन्होंने अपना नाम चस्पा कहीं नहीं किया।